खंड चार शुक्लोत्तर आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की छायावाद विरोधी आलोचना दृष्टि और छायावाद के कवि आलोचकों के द्वारा अपने कृतित्व की व्याख्या विश्लेषणात्मक आलोचनाओं के समानांतर ऐसे आलोचकों का भी एक वर्ग उभर रहा था जिन्होंने अत्यंत सहृदयता से छायावाद की सहानुभूतिपूर्ण व्याख्याएं की। इनमें पंडित शांति प्रिय द्विवेदी का विशेष स्थान है। हिंदी आलोचना में पंडित शांति प्रिय द्विवेदी समय 1906 से 1967 ईस्वी का विरुद्ध प्रभाववादी आलोचक के रूप में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा को कोई ठीक ठिकाने की वस्तु न मानकर कहा, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में, उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। परंतु पंडित शांति प्रिय द्विवेदी का इस पद्धति से कोई सीधा संबंध है ऐसा उल्लेख इस प्रसंग में नहीं मिलता, बल्कि उनका विचार था कि पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है। शायद पंडित शांति प्रिय द्विवेदी के प्रभाववादी समझे जाने का एक बहुत कारण उनकी गद्य शैली थी। उन्होंने छायावादी ढंग पर कविता न लिखकर गद्य लिखा और यह गद्य भी प्रसाद और निराला कासा नहीं बल्कि पंत कासा। इसलिए उन्होंने छायावाद के संबंध में जिन बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की ओर पहले पहल ध्यान दिलाया वे पीछे पड़ गई और छायावादी कवियों की कविता पर भावोच्छल हो जाना आगे आ गया। वे स्वयं भी कहीं इसके बारे में सजग थे, वरना उन्हें प्रभाववादी आलोचना की सफाई देने की जरूरत न पड़ती। प्रभाविक आलोचना द्वारा आलोचना में अनुभूति का परिचय मिलता है। अनुभूति के लिए रसज्ञता ही नहीं रसार्द्रता भी चाहिए। कहा जाता है कि उनकी ऐसी ही किसी उक्ति पर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनसे कहा था कि गीली मिट्टी से मकान नहीं बनते। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी की गद्य काव्यमयी शैली भले ही उनकी भावोच्छलता का प्रमाण प्रस्तुत करती हो, पर किसी काव्य की तह में जाकर उसके वस्तु तत्व की विशेषताओं को पकड़ने में भी वे नहीं चूकते थे। वस्तुतः छायावाद के रसज्ञ आलोचक के रूप में उन्हें जो महत्व मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। सहानुभूति की व्याख्या करते हुए उन्होंने छायावाद के विषय में ऐसे बहुत से सूत्र दिए जो बाद में बहुधा उनका नामोल्लेख किए बिना ही छायावाद की आलोचना के संदर्भ में प्रचार पाते रहे। उदाहरण के लिए शांति प्रिय द्विवेदी पहले आलोचक थे जिन्होंने युग की राजनीतिक चेतना और छायावाद की काव्य चेतना में एक संगति और संबंध देखा। उन्होंने सबसे पहले छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहा। इतना ही नहीं, उस युग के भावबोध के साथ समूची साहित्य चेतना में उन्होंने एक अंतसंगति के दर्शन किए और उसकी व्यापक मनोभूमि को स्पष्ट किया। गांधीवाद के साहित्यकार प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण और जैनेन्द्र तथा छायावाद के कलाकार प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, ये सब एक ही परिवार की प्रजाएं हैं। इनमें शिल्प भेद है, मनोभेद नहीं। द्विवेदी जी की साहित्य की धारा को ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के क्रमिक विकास के संदर्भ में रख कर देखते हैं, उसमें अंतर्व्याप्त सांस्कृतिक सामाजिक सूत्रों को स्पष्ट करते चलते हैं। भारतेंदु युग से लेकर छायावाद युग तक एक ही मनोजगत का उत्तरोत्तर विकास है, क्योंकि इनका सांस्कृतिक धरातल एक है। इसी परंपरा को जब वे ब्रज भाषा काव्य तक ले जाते हैं तो उनका निष्कर्ष यह होता है, ब्रज भाषा के समय में यदि सामंतवादी सामाजिक वातावरण था तो छायावाद काल में पूंजीवादी सामाजिक वातावरण, दोनों में अंतर केवल अतीत और वर्तमान साम्राज्यवाद का है। मूलतः दोनों की विषम सामाजिक व्यवस्था एक सी है। छायावाद के प्रति एक गदगद आत्मविभोरता का भाव रखकर भी शांतिप्रिय द्विवेदी उसकी सीमाएं बताना नहीं भूले, जो इस बात का प्रमाण है कि वे छायावाद को पसंद ही नहीं करते थे, उससे उसे समझे ते भी थे और सही समझते थे। शांतिप्रिय द्विवेदी ने इस समझदारी का परिचय उन प्रसंगों में भी दिया जहां छायावाद के कवियों की व्याख्या करने और समझाने के लिए उन्होंने सुंदर ही नहीं सटीक उदाहरणों का चुनाव किया। आलोचक के लिए सबसे जरूरी बात साहित्य की यही समझ है। यह अलग बात है कि उसे व्याख्या विश्लेषण के रूप में प्रकट करे या हृदय के उद्गारों की शक्ल दे। यह सही है कि शांतिप्रिय द्विवेदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंदुलारे वाजपेयी के समान तर्क कर्कश बौद्धिक क्षमता न थी, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास एक काव्य मर्मज्ञ की दुर्लभ अंतर्दृष्टि थी। वे सच्चे अर्थों में छायावादी कवियों के सहृदय थे। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी के युवा छात्रों की कम से कम 3 पीढ़ियां शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनाओं के सहारे ही छायावाद का परिचय पा सकी। एक युग तक किशोरमती युवकों के लिए उनकी संचारिणी, समसामयिक आदि कृतियां छायावाद की बाल मनोरमा का कार्य करती रही हैं। इस दृष्टि से पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी छायावाद को हृदय ग्राही बनाने वाले व्याख्याकारों में अग्रणी हैं। नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र ने शुक्लोत्तर आलोचना की बृहत्त्रयी का निर्माण किया। शांतिप्रिय द्विवेदी के व्यक्तित्व में छायावाद को एक सहृदय और काव्य रसज्ञ पाठक तो मिल गया था, किंतु ऐसा तर्क सिद्ध दबंग आलोचक नहीं जो उन प्रतिमानों को चुनौती दे सके जिन पर कसकर आचार्य शुक्ल इस काव्यधारा को खोटा सिद्ध कर चुके थे। शुक्ल जी से पहले हिंदी आलोचना की परंपरा विशेष समृद्ध न थी, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना की जो प्रौढ़ता प्रदान की थी, उससे उसे आगे ले जाना या उसका दिशा परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात थी। आचार्य शुक्ल का विशाल व्यक्तित्व एक चुनौती की तरह परवर्ती आलोचकों के सामने खड़ा था, किंतु अपने पूर्ववर्ती आलोचना साहित्य की इस तुलना में शुक्ल जी की आलोचना व्यक्तित्व जितना विराट लगता है, उतना परवर्ती आलोचकों के सामने नहीं। बाद की आलोचना में उनकी सीधी और पहली टकरावट छायावाद को लेकर अपने ही शिष्य नंदुलारे वाजपेयी समय 1906 से 1967 ईस्वी से हुई। छायावाद के मूल्यांकन के प्रश्न पर शांतिप्रिय द्विवेदी और नगेंद्र ने भी शुक्ल जी का विरोध ही किया था, किंतु इस विरोध में न प्रखरता थी न टकराहट। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद की प्रशंसा उद्गारों में की और नगेंद्र ने पंत की आलोचना के रूप में छायावादी काव्य की मार्मिक व्याख्या और विश्लेषण किया, परंतु नंदुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती दी और आचार्य शुक्ल ने से हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिभेद सामान्य रूप से भक्तिकल और विशेष रूप से निर्गुण काव्य को लेकर व्यक्त हुआ। शुक्ल जी निर्गुण भक्तों के रहस्यवाद को एकांतिक और साधनात्मक मानकर उसे पढ़ी लिखी जनता के मतलब की वस्तु नहीं मानते थे। इस रहस्यवाद की परंपरा को आधुनिक युग तक खींचकर उन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर के संबंध में भी अपनी शंका व्यक्त की थी। इसके ठीक विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी संत भक्तों को रहस्यवादी कहना ठीक नहीं समझते थे और कबीर और रविंद्र के वे अनन्य प्रशंसक थे। सवाल सिद्धांत का ही नहीं अभिरुचि का भी था। साहित्य को वे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों के बीच रखकर देखने के पक्ष में थे, इसलिए वे भक्तिकाल को विदेशी आक्रमणों का तत्कालिक परिणाम न मानकर भारतीय धर्म और संस्कृति के विकास की सहज परिणति मानते थे। इस प्रकार नगेंद्र की छायावादी काव्य के सरस व्याख्याओं में नंदुलारे वाजपेयी के कर्कश सिद्धांत विरोध में और हजारे प्रसाद द्विवेदी के नवीन इतिहास बोध में शुक्ल जी की आलोचना पद्धति से एक टकराहट के दर्शन होते हैं, परंतु इन तीनों में से हराबल में वाजपेयी जी ही थे। स्वयं आचार्य शुक्ल भी शायद उन्हीं से पड़ने वाली चोट का सबसे अधिक अनुभव करते थे। तृतीय उत्थान के अंतर्गत समालोचना के प्रसंग में उन्हें छायावाद पर केवल प्रोफेसर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रानंदन पंत ही ठिकाने की मिली, जबकि उसी वर्ष 1938 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद पर वाजपेयी जी के लेखों का संग्रह पुस्तक का कार्य रूप में प्रकाशित हुआ था, और उससे कई वर्ष पहले वे भारत के में निरंतर स्फुट निबंध लिख रहे थे। फिर भी शुक्ल जी ने न उनका नामोल्लेख करने की आवश्यकता समझी और न उनकी रचनाओं का हवाला देने की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना शैली का भी एक नमूना उन्होंने प्रभावाभिव्यंजक आलोचना के बतौर पेश कर उसे एक वाक्य में लेख का नाम लिए बिना ही खारिज कर दिया, पर जिस आलोचना को देख उन्हें सबसे अधिक ग्लानि हुई थी उसके लेखक का नाम लिए बिना ही उन्होंने कहा, ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अंग्रेजी अथवा बंगला के समीक्षा शास्त्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला ला कर खड़ी की जाती है। कहीं कहीं तो किसी अंग्रेजी कवि के संबंध में की गई हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया जाता है। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसलों वाले दो एक आलोचक तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाग्जाल बिछाने वाले हैं। यह सत्य है कि वाजपेयी जी ने अपने जयशंकर प्रसाद के लेखों में अंग्रेजी उद्धरणों का प्रचुर प्रयोग किया है। यह प्रवृत्ति उस दौर की अन्य आलोचनाओं में भी व्यापक रूप में से मिलती है, परंतु 1936 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा में सूर सागर के संपादन का कार्य पूरा कर लेने के बाद सन 1937 में रामचरितमानस का संपादन करने के लिए वाजपेयी जी ही गीता प्रेस गोरखपुर गए थे, तो क्या यह संकेत वाजपेयी जी की ओर से है? शुक्ल जी के द्वारा नामोल्लेख न कर दो एक आलोचकों के बहाने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना जहां उनकी आक्रोश जन्य उपेक्षा का द्योतक है, वहां इतनी दूर तक आलोचनाओं से क्षुब्ध होना आलोचक के महत्व का गरज यह कि नंदुलारे वाजपेयी ने प्रबल विरोधों के रहते भी छायावादी काव्य के सौंदर्य का उद्घाटन कर उसके महत्व प्रतिपादन का हौसला दिखाया। शुक्लोत्तर समीक्षा के बारे में वाजपेयी जी का कहना था कि शुक्ल जी की अपेक्षा नई समीक्षा में साहित्य के ऐतिहासिक विकास और सामाजिक प्रेरणा शक्तियों, शैली भेदों और कला स्वरूपों की परख अधिक व्यापक और मार्मिक है, इसमें संदेह नहीं। शुक्ल जी की नैतिक और बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा नए समीक्षकों के सौंदर्य अनुभूति और कला प्रधान दृष्टि एक निश्चित प्रगति है। वस्तुतः इस कथन के द्वारा वाजपेयी जी स्वयं अपनी आलोचना शैली की विशेषताओं की ओर संकेत करना चाहते हैं। शुक्ल जी से वाजपेयी जी को शिकायत थी कि शुक्ल जी की सारी विचारणा द्विवेदी युग की व्यक्तिगत भावात्मक और आदर्शोन्मुख नीतिमत्तता पर स्थित है। समाजशास्त्र, संस्कृति और मनोविज्ञान की वस्तुन्मुखी मीमांसा उन्होंने नहीं की है। प्रवृत्ति विषयक उनकी धारणा भारतीय धार्मिक धारणा की अपेक्षा पाश्चात्य अधिक है। उनका काव्य विवेचन भी प्रबंध कथानक और जीवन दर्शन के व्यक्त रूपों का आग्रह करने के कारण सर्वांगीण और तटस्थ नहीं कहा जा सकता। नवीन युग की सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं का विवेचन और उनसे होकर बहने वाली काव्यधारा का आकलन हम शुक्ल जी में नहीं पाते। वाजपेयी जी की यह शिकायत सही थी या नहीं यह अलग बात है, लेकिन शिकायत उनको थी, इसलिए यह जरूरी था कि वे जिस साहित्य के लिए इन प्रतिमानों को नाकाफी समझते थे उसके लिए समुचित मानदंडों की खोज स्वयं करें। वाजपेयी जी ने यह भी किया, उन्होंने सही या गलत अपने प्रतिमान प्रसाद और निराला के काव्य विशेषकर प्रगीत काव्य के आधार पर बनाए थे। प्रसाद के आंसू की मार्मिक पंक्तियां निराला की तुम और मैं, जूही की कली और अन्य अनेक रचनाएं तथा पल्लव के बहुत से प्रगीत विशिष्टता का प्रतिमान बनकर मेरे समक्ष आए थे। मेरा कार्य केवल विवेचन और व्याख्या करना था। प्रसाद और निराला के काव्य में व्याप्त पौरुष और शक्ति तत्व ने उन्हें विशेष आकर्षित किया था। वे सब उसे शब्दों और कविता का गुण न मानकर कवि की चेतना का ऐसा प्रतिफलन मानते थे जो सारे काव्य में व्याप्त रहता था। दूसरी विशेषता जो इन दोनों कवियों को औरों की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करती है वह है इनकी काव्य की प्रति अप्रतिम निष्ठा, जिसे कवि कर्म के प्रति चरम प्रतिबद्धता भी कहा जा सकता है। वाजपेयी जी का सहृदय आलोचक निराला और प्रसाद दोनों के काव्य के प्रति समान रूप से निष्ठावान और समर्पित था, इसलिए वे कभी इसको कभी उसको परस्पर श्रेष्ठ कहते रहते थे। कोई तुलनात्मक निर्णय देने के क्षण में उन पर भारी धर्म संकट आ पड़ता था, किंतु कुल मिलाकर वे शायद प्रसाद को ही अधिक वरेण्य मानते थे। वाजपेयी जी के साहित्य के मूल्यांकन के लिए किसी साहित्येतर मूल्य को निर्णायक स्थिति में रखने के पक्ष में न थे। वे काव्य के संदर्भ में जीवन चेतना नैतिकता आदि से ऊपर उठकर काव्य सौष्ठव को स्थान देना उचित समझते थे। संभवतः इसी कारण वे न प्रेमचंद के साथ न्याय कर सके न प्रगतिशील साहित्य के साथ। उनके आलोचक की चेतना मूलतः छायावादी थी, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उन्होंने छायावाद को विशुद्ध साहित्यिक प्रतिमानों से ही परखा था। वस्तुतः उनका एक बहुत बड़ा योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वातंत्र आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का भी है। उन्होंने वैचारिक धरातल पर उसके सामाजिक संदर्भ को स्पष्ट किया। नई छायावादी काव्य धारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। यह छायावाद को समुचित युग संदर्भ प्रदान करना था, परंतु छायावाद की भारतीयता उजागर करने के साथ ही वे यह कहने से भी न चूके थे कि किसी हद तक यह नया कला आंदोलन जो हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से प्रसिद्ध है, यूरोप के सुप्रसिद्ध रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आंदोलन से समानता रखता है। इस प्रकार मन के में अनेक मान्यताएं लेकर काव्य समीक्षा में प्रवृत्त होने के कारण वाजपेयी ने दोहरे मानदंडों का प्रयोग किया। वे शुक्ल जी की आलोचना को पांडित्यपूर्ण किंतु वैयक्तिक रुचि की द्योतक मानते हुए उस पर वस्तुगत और वैज्ञानिक न होने का आरोप लगाते थे। सवाल यह है कि क्या वाजपेयी जी स्वयं इस आक्षेप से बरी हैं? क्या वाजपेयी जी जो प्रसाद के उपन्यास कंकाल के यथार्थवाद के कारण उसकी प्रशंसा करते थे, अकेले इसी गुण के आधार पर प्रेमचंद के साहित्य की उत्कृष्टता को देख पाने में असमर्थ हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की काशी शाखा के कई वर्षों सभापति रहकर भी वे आखिर प्रगतिवादी साहित्य की उपेक्षा क्यों करते रहे? वाजपेयी जी ने व्यवस्थित ढंग से काव्यशास्त्र का विवेचन नहीं किया, किंतु चूंकि आचार्य शुक्ल रस के प्रतिमान की लोकमंगलवादी व्याख्या कर उसकी प्रतिष्ठा कर चुके थे, इसलिए आचार्य शुक्ल पर लिखे निबंध में उन्होंने उस पर विचार करना आवश्यक समझा। उन्होंने शुक्ल जी के द्वारा लोक धर्म का साहचर्य करने को उसे परिमार्जित स्वरूप देना कहा, परंतु उसे एक गतिहीन निरूपण के ही सिद्ध किया और ब्रश के द्वारा मूल्यांकन की जो रूढ़ रीति शास्त्रीय परंपरा थी उसका खंडन किया। आगे चलकर वे रस की एक अपनी व्याख्या प्रस्तुत करके उसे स्वीकार करने लगे थे। जब हम कहते हैं कि रस काव्य की आत्मा है, तब हमारा आशय यह होता है कि प्रत्येक काव्य में यदि वह वस्तुतः काव्य है, मानव समाज के लिए आह्लादकारिणी भावात्मक नैतिक और बौद्धिक अनुभूतियों का संकलन होगा ही। रस के शब्द से आचार्यों का आशय काव्य की इस मानवतावादी सत्ता से ही है। रस की अलौकिकता के वे शुक्ल जी के समान ही विरोधी थे और उसे पाखंड समझते थे। वाजपेयी जी की आलोचना की परिधि व्यापक थी। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक सभी रूपों को और मध्ययुगीन एवं आधुनिक कवियों को विषय बनाकर आलोचनाएं लिखी, किंतु उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा जितनी काव्यालोचन में व्यक्त हुई उतनी दूसरे रूपों में नहीं। उन्होंने अनेक कवियों की तुलना कर तल स्पर्शी दृष्टि से उनके सूक्ष्म अनंतरों को अलगाया। उदाहरण के लिए गुप्त जी प्रसाद और निराला की राष्ट्रीय कविताओं की तुलना करते हुए उन्होंने द्विवेदीकालीन और राष्ट्रीयतावाद और छायावादी मानव ऐक्य की भावनाओं के मौलिक अंतर को स्पष्ट किया। गुप्त जी की नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है में जहां उन्होंने देश की चौहद्दी कायम करने का प्रयास देखा, वहां प्रसाद की अरुण यह मधुमय देश हमारा में विश्व देशीयता और निराला की प्राण प्रणव ओंकार आदि रचनाओं में प्राकृतिक और ज्ञान जन्य मानव ऐक्य देखा। वाजपेयी जी ने बड़ी निष्ठा से समसामयिक लेखकों और काव्य धाराओं पर आलोचनात्मक लेख लिखे। आलोचक कर्म को वे कितनी गंभीरता से लेते थे और कितने दायित्वपूर्ण ढंग से निभाते थे, इसका प्रमाण हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में संकलित लेख है। सूर के अतिरिक्त उन्होंने मुख्यतः खड़ी बोली साहित्य पर लिखा, परंतु उसके बीच भी वे रत्नाकर जैसे समर्थ और सरस ब्रज भाषा कवि का युग साहित्य के बीच स्थान निर्धारण करना न भूले। विगत युग के संस्कारों की स्थापना नव्यतर युग में करना निसर्गत एक कृत्रिम प्रयास है। वह काव्य सुशोभन और गौरवास्पद हो सकता है, किंतु वह युग का अनिवार्य काव्य नहीं हो सकता। उत्कृष्ट साहित्य सदैव अनिवार्य हुआ करता है। रत्नाकर की चूक कहाँ थी, वे इसे वाजपेयी जी सही पकड़े थे। सामान्यतः वाजपेयी जी को स्वच्छंदतावादी, काव्य सौष्ठववादी आदि नामों से जाना जाता है, परंतु कहीं कहीं उनकी समीक्षा में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। भावबोध और युगीन अपेक्षाओं के नाते वे प्रगतिशील प्रवृत्तियों को प्रयोगवादी दृष्टि की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट समझते थे, किंतु जब कविता की बात आती थी तो अच्छी कविता के उदाहरणों के रूप में प्रयोगवादी और नए कवियों की रचनाओं से उद्धरण प्रस्तुत करते थे। यह विरोध विशेषकर उनकी आलोचना के परवर्ती और दौर में व्यक्त हुआ। धर्मयुग के 3 अंकों में नई कविता एक पुनरीक्षण नाम से प्रकाशित लेखमाला की संगति उनके पहले के लेखन से किसी तरह नहीं बैठाई जा सकती थी। इसे नए आलोचकों के पात में बैठने का लोभ समझा जाए या सतत आत्मनिरीक्षण के परिणाम स्वरूप अपने मत में परिवर्तन और संशोधन की उदारता विरोध है और भी है। काव्य में वे वस्तु तत्व को महत्व देते थे। समाजवादी विचारधारा को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था। आज हिंदी में श्रेष्ठ साहित्य के सृजन के कौन कौन से क्षेत्र हैं? निश्चय ही समाजवादी विचारों के क्षेत्र हैं, किंतु उन्होंने जसपाल, राहुल नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रगतिवादी लेखकों की एक भी समीक्षा न की। इसका अभिप्राय यह नहीं कि वाजपेयी जी के पास कोई निश्चित आलोचना दृष्टि न थी। साहित्य में आलोचना की क्या भूमिका है, इसके बारे में उनकी स्पष्ट धारणा थी कि समीक्षा न तो रचना विशेषकर की अनुचरी मात्र है और न साहित्य का कठोरता से नियंत्रण करने वाली अभिनेत्री ही, बल्कि वह रचनात्मक साहित्य की प्रिय सखी, सुभाषिणी, सेविका और सहृदय स्वामिनी कही जा सकती है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के साहित्य के साथ सुभाष और सहृदयत्व का निर्वाह करने के हेर फेर में कहीं कहीं विरोध सा दिखाई पड़ने लगता है। वैसे उन्होंने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की विज्ञप्ति के अंत में समीक्षा संबंधी अपने मुख्य चेष्टाओं को समझने की गरज के से 7 सूत्रों में बांधा है, जिनमें वे रचना के में कवि की अंतर्वृत्तियों, मानसिक उत्कर्ष अपकर्ष का अध्ययन, एनालिसिस ऑफ द पोएटिक स्पिरिट को प्रमुखता के रूप में पहला स्थान देते हैं और काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश के अध्ययन को अंतिम एक वाक्य में वे साहित्य के मानसिक और कलात्मक उत्कर्ष का आकलन करना इन निबंधों का प्रधान उद्देश्य स्वीकार करते हैं। बाद में आधुनिक साहित्य की भूमिका में उन्होंने पश्चिम की 4 प्रमुख समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात भी कही है, जिसमें वैयक्तिक विज्ञानवादी, समाजवादी, कला विज्ञानवादी तथा उपयोगितावादी या नीतिवादी पद्धतियों का उल्लेख है। किंतु इस प्रकार की घोषणाओं के प्रकाश में स्वयं वाजपेयी जी की आलोचना को समझने का प्रयास विशेषकर लाभप्रद तो क्या भ्रामक भी ही होगा। उन्हें तो ऐसे ही आलोचक के रूप में समझना चाहिए जिसकी चेतना और काव्य रुचि का निर्माण उदयकालीन छायावादी काव्य से हुआ था और जिसने अपनी आलोचना दृष्टि का निर्माण भी इसी काव्य के संदर्भ में किया था। शुक्ल जी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी समय 1907 से 1979 ईस्वी का मतभेद साहित्य के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर था। वे शुक्लोत्तर युग के अनन्य आलोचकों से इस बात में भिन्न थे कि उन्होंने साहित्य को न विशेष युग या राजनीतिक परिवर्तनों की दृष्टि से देखा और न कवि की मनोगत चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में। वे साहित्य की हर प्रवृत्ति और व्यक्ति को देश काल व्यापी सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर देखने समझने के आग्रही थे। इसलिए हिंदी साहित्य को उन्होंने संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत आदि साहित्यों और ब्राह्मणों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध, संत आदि सभी धर्मों से निर्मित एक समवेत भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयत्न किया। उनके इस दृष्टिकोण को समझने के लिए उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका समय 1940 ईस्वी का बहुत महत्व है। भूमिका के पहले अध्याय हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास के पहले ही पृष्ठ पर उन्होंने अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है। भारतीय विचारधारा को समझने में हिंदी साहित्य के महत्व की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, कम से कम भारतवर्ष के आधे हिस्से की सहस्र वर्ष व्यापी आशा आकांक्षाओं का मूर्तिमान प्रतीक यह हिंदी साहित्य अपने आप में एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि इसकी उपेक्षा भारतीय विचारधारा के समझने में घातक सिद्ध होगी। ध्यान देने की बात है कि उन्होंने इस साहित्य की देश कालगत व्याप्ति को महत्व दिया है। अब तक इस साहित्य का अध्ययन जिन दृष्टियों से होता रहा है उन पर आक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश हिंदी साहित्य के अध्ययन और लोक चक्षु गोचर करने का भार जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है वे भी हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही अधिक बतलाते हैं और इस प्रकार अनजान आदमी को दो ढंग से सोचने का मौका देते हैं। एक यह कि हिंदी साहित्य का एक हतदर्प पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान पतन के साथ अंगागी भाव से संबंध है, और दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो भी वह एक निरंतर पतनशील जाति की चिंताओं का मूर्त प्रतीक है जो अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मैं इन दोनों बातों का प्रतीकवाद करता हूँ। ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया तो भी इस साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कहना आवश्यक है कि प्रतीकवाद के लक्ष्य हैं आचार्य शुक्ल और विषय है उनका मध्ययुगीन साहित्य के संबंध में दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टियों का अंतर सबसे अधिक प्रकट रूप में मध्य युग के साहित्य को लेकर सामने आया। द्विवेदी जी ने भक्ति साहित्य को सतही राजनीतिक घटनाओं से घटित होने वाला परिवर्तन न मानकर शताब्दियों से गहरे प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक घटनाओं से जोड़ा। कबीर आदि संतों को उन्होंने सिद्धनाथ साहित्य की परंपरा में रखा और रीतिकालीन काव्य का संबंध सूत्र उन्होंने काम सूत्र और गाथा सप्त सती आदि की परंपरा से बैठाया। इस प्रकार शुक्ल जी से भिन्न उन्होंने इन साहित्यिक परिवर्तनों के मूल में राजनीतिक उथल पुथल को सर्वोपरि महत्व न देकर एक सांस्कृतिक नैरंतर्य की प्रतिष्ठा की। हिंदी साहित्य की भूमिका के पहले दो अध्याय और परिशिष्ट इस दृष्टि से विशेषकर महत्वपूर्ण है। वाजपेयी द्विवेदी जी एक ओर सांस्कृतिक निरंतरता के समर्थक थे और दूसरी ओर अखंडता के, इसलिए जहां वे भक्ति साहित्य में एक कालक्रमिक चिंतन परंपरा पाते हैं वहां उसकी सगुण निर्गुण आदि विभिन्न धाराओं को खंड खंड बांट कर देखने के बजाय एक विराट भक्ति चेतना और भक्ति धारा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, साहित्य की बात करते करते द्विवेदी जी अक्सर चित्र, संगीत, नृत्य, विज्ञान, इतिहास, कला और ज्ञान की सभी सरणियों को समझने का प्रयत्न करने लगते थे। इस निरंतर और अखंडता को समाज और संस्कृति के बाह्य स्तर के अलावा काव्य के आंतरिक स्तर पर प्रतिफलित होते हुए कैसे देखा जाए, इसके लिए द्विवेदी जी ने काव्य रूढ़ियों और कवि प्रसिद्धियों के माध्यम से काव्य का अध्ययन करने की पद्धति सामने रखी। उनकी समझ में काव्य रूढ़ियां और कवि प्रसिद्धियां किसी देश और जाति की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिफलन होती हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में संकलित उन अपने व्याख्यानों में और बातों के अतिरिक्त पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की जांच के बहाने द्विवेदी जी ने उस विराट ग्रंथ की आलोचना प्रक्रिया में कथानक रूढ़ियों की भूमिका का अध्ययन कर सिद्धांत को व्यवहार का रूप दिया है। द्विवेदी जी ने इस प्रकार एक बड़े पैमाने पर साहित्यिक रुचि में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने किसी साहित्य के निर्माण में ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ को महत्व इसलिए दिया कि क्योंकि वे जनता की रुचि को महत्व देते थे। जन जीवन की रुचि के प्रति यह मोह उनके मानवतावादी दृष्टिकोण से पैदा हुआ था। द्विवेदी जी मानव को जीवन के सभी प्रयत्नों को का लक्ष्य मानते थे। अशोक के फूल निबंध संग्रह में संकलित उनके निबंध का शीर्षक है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी का यह मानवतावाद कुछ दूर तक शुक्ल जी के लोक मंगलवाद से भी मेल खाता है और इसी के कारण वे आधुनिक आलोचकों में प्रगतिशील आंदोलन के सर्वाधिक निकट दिखाई पड़ते हैं। संभवतः अपने इस दृष्टिकोण के कारण शुक्लोत्तर युग के वरिष्ठतर आलोचक में द्विवेदी जी अकेले हैं जिन्होंने प्रेमचंद को प्रथम श्रेणी के साहित्यकारों में स्थान दिया है। उनके बारे में डॉक्टर देवराज का कहना है कि द्विवेदी जी मुख्यतः एक पंडित हैं, एक महापंडित या स्कॉलर जिनका प्रभुत्व क्षेत्र सांस्कृतिक इतिहास है। साथ ही उनके व्यक्तित्व में मानववादी जीवन दृष्टि का आवेगात्मक आकलन भी है। इस इतिहास बोध और सांस्कृतिक प्रेम का आशय यह नहीं कि वे समसामयिक व आधुनिक प्रश्नों के प्रति उदासीन थे। अपने समय में बहुचर्चित आधुनिकता के लक्षण को द्विवेदी जी ने कितना सटीक समझा था यह उनके इस कथन से स्पष्ट है। अत्यंत आधुनिक कवि इस भावुकता को पसंद नहीं करता, वह वस्तु को आत्मनिरपेक्ष भाव से देखने को ही सच्चा देखना मानता है। यह बात उसके निकट सत्य नहीं है कि वस्तु को उसने वैसा देखा, बल्कि यह कि वस्तु उसके बिना भी वैसी है। इस वैज्ञानिक चित्रवृत्ति का प्रधान आनंद कौतूहल में है, उत्सुकता में है, आत्मीयता में नहीं। द्विवेदी जी समसामयिकता, आधुनिकता और परंपरागतता को कुछ ऐसे मिला जुला कर चलते थे कि वे एक दूसरे में सहज अंतर्भूत हो जाती थी। कबीर दास मिला जुला कर चलते थे कि वे एक दूसरे में सहज अंतर्भूत हो जाती थी। कबीर दास की समीक्षा में द्विवेदी जी ने एक ओर तो अपने इतिहास बोध का परिचय देते हुए धर्म, समाज, जाति, व्यवस्था और संस्कार तथा पूर्ववर्ती परंपरा सभी के संदर्भ में कबीर का स्थान निर्धारित किया है और दूसरी ओर कबीर का व्यक्तित्व विश्लेषण करते हुए उन्होंने अखरता, स्वभाव की फक्कड़ता, घर फूंक, मस्ती और फक्कड़पना, लापरवाही को महत्व दिया है। उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, भाषा को उनके सामने लाचार पाया है। उनके दो टुक फक्कड़पना और मस्त अंदाज की प्रशंसा की है। क्या द्विवेदी जी का इन गुणों से लगाव उन्हें अपने युग के उत्तर छायावादी कवियों दिनकर, बच्चन, नवीन, भगवती चरण आदि से नहीं जोड़ता? जो द्विवेदी जी साहित्य को निरंतर व्यापक परिप्रेक्ष्य में जांचने की बात करते हैं, उनकी इस अभिरुचि की जांच उनके युग के उन कवियों के संदर्भ में होनी चाहिए जो जवानी और मस्ती के कवि कहलाते थे, जो अपने को दीवाना समझ कहते थे। कबीर ने भी भक्ति के मद का बहुत गुणगान किया है और बच्चन की मधुशाला और उनका हालाबाद भी निरालौकिक नहीं है, और दिनकर भी अपनी बात को पूरे जोश और दमखम के साथ कहने वाले कवि हैं। तात्पर्य है यह है कि द्विवेदी जी ने जिस फक्कड़पन, मस्ती और अखरता का हवाला कबीर में दिया, वह उनके युग के काव्य कौशल के माहौल में थी। शायद उत्तर छायावादी काव्य में प्रकट होने वाली ये विशेषताएं विद्रोह, क्रांतिकारिता, फक्कड़ता, मस्ती, प्रगतिशीलता और काव्य एक व्यापक मानववाद, एक सामान्य भावबोध से पैदा हुई थी, जिसने उस युग के कवि और आलोचक दोनों की रुचि और काव्य संसार का संस्कार का निर्माण किया था। द्विवेदी जी ने ही काव्य ही नहीं काव्य शास्त्र को भी अपनी इतिहास प्रेम दृष्टि से परखा और उसकी व्याख्या की। उनके सैद्धांतिक मान्यताएं मुख्य रूप से साहित्य का मर्म है में सामने आई। उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र विशेषकर रस सिद्धांत की भी ऐतिहासिक व्याख्या की। भरत से पंडित राज तक रस सिद्धांत के रूप परिवर्तन की व्याख्या उन्होंने भारतीयता के उत्थान पतन के संदर्भ में की और निष्कर्ष निकाला कि भरत के साथ रस सिद्धांत का जो उदात्त सात्विक रूप सामने आया था वह पंडित राज तक आते आते ह्रासशील पतनों उन्मुख भारतीयता के स्वरूप के कारण श्रृंगार और उसमें भी विशेषकर विशेष प्रकार के श्रृंगार तक परिसीमित हो गया। दस रूपक की भूमिका में भी द्विवेदी जी ने नाट्य रस के विकास पर विचार किया। कुछ निबंधों में उन्होंने शब्द शक्तियों पर भी लिखा और छंद तत्व और लय तत्व तो उनके प्रिय और नित्य विषय रहे। वे जहाँ जहाँ तहाँ प्रसंग निकालकर इन पर निरंतर विचार करते ही रहे। अपनी आलोचना के पिछले दौर में द्विवेदी जी ने सौंदर्य शास्त्री विषयों के प्रति विशेष रुचि दिखाई। प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद 1940 ईस्वी की रचना कर वे पहले भी इस ओर अपने रुझान का संकेत दे चुके थे, परंतु कुछ वर्षों से उनके सौंदर्य शास्त्र संबंधी कई लेख आलोचना के अंकों में समय समय पर प्रकाशित तो होते रहे हैं। इन लेखों में उन्होंने मुख्य रूप से लायलित्य तत्व सौंदर्य की अपेक्षा वे इस संदर्भ में लालित्य शब्द को अधिक उचित मानते हैं का विवेचन प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष रूप में शुक्लोत्तर युग के वरिष्ठ आलोचक में द्विवेदी जी का महत्व विशेष रूप से उस दृष्टिकोण के लिए है जो उन्होंने साहित्य के अध्ययन के लिए सामने रखा। यह दृष्टिकोण संस्कृत और हिंदी समीक्षा की ठेठ परंपराओं से निश्चय ही भिन्न था और इसके कारण हिंदी आलोचना में एक नए ढंग की समीक्षा पद्धति का ही नहीं काव्य रुचि का निर्माण हुआ। शुक्लोत्तर युग की आलोचक त्रयी के सबसे कनिष्ठ आलोचक डॉक्टर नगेंद्र का 1915 ईस्वी पहला समीक्षात्मक निबंध छायावाद 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तब से वे निरंतर लिख रहे हैं। अपने युग के आलोचकों में परिणाम में ही उनका कृतित्व सर्वाधिक नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने लेखन में एक निरंतर्य और नियमितता बनाए रखी है जो सर्वथा विरल है। जब नगेंद्र ने हिंदी आलोचना में प्रवेश किया तब तक नंदुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में कुछ दूर तक अपना स्थान बना चुके थे। नगेंद्र ने अपने निबंध आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचक आस्था के चरण पृष्ठ नंबर 324 समय 1940 ईस्वी में इन दोनों की आलोचना की विशेषताओं को लक्ष्य किया है। उन्होंने नंदुलारे वाजपेयी का महत्व हिंदी के उस पहले आलोचक के रूप में माना जिसने निर्भीक और निर्भ्रांत होकर छायावाद के महत्व को स्वीकृत और प्रतिष्ठित किया। जहां उन्हें वाजपेयी जी की आलोचना की गंभीरता और अंतस्तत्वों में गहरे जाकर उन्हें ग्रहण करने के प्रयत्न ने आकर्षित किया, वहां छायावाद पर दार्शनिकता का आवरण चढ़ाने की प्रवृत्ति को उन्होंने दोष समझा। उन्हें लगा कि कला पक्ष में उन्हें जैसे कुछ कहने को ही नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्कृत साहित्य के गहन और विस्तृत अध्ययन ने नगेंद्र को प्रभावित किया। उनकी नवीन काव्य ग्रंथों की आलोचना परिणाम में अपर्याप्त होने पर भी नंद दुलारे वाजपेयी और शांति प्रिय द्विवेदी की तुलना में पुष्ट और सुथरी प्रतीत हुई। साथ ही शास्त्रीय होने के कारण हिंदी पाठकों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। शांति प्रिय द्विवेदी के बारे में उनकी साफ राय थी कि वे छायावाद के रस का आस्वादन तो करा सके, लेकिन स्वरूप स्पष्ट नहीं कर सके। तात्पर्य कहने का तात्पर्य है कि वे इन आलोचकों की शक्ति और सीमा दोनों के प्रति सतर्क थे, अतएव इनकी आलोचना के गुणों को उन्होंने आत्मसात कर उनका विकास करने का प्रयत्न किया और दोषों से भरसक बचने का। उदाहरण के लिए वे छायावाद पर आध्यात्मिकता का आरोप करने की प्रवृत्ति से बचकर उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं और अपनी आलोचना को उत्तरोत्तर अधिक शास्त्रोन्मुख बनाते चले गए। नगेंद्र ने समीक्षा का आरंभ छायावाद पर स्फुट निबंधों से किया। इस क्रम में उनका पहला निबंध हंस में 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका उपयोग बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत में प्रथम परिच्छेद के रूप में किया। पहली पुस्तकाकार समीक्षा भी उन्होंने कवि पंत पर ही लिखी। आरंभ से ही उनका ध्यान पश्चिम के काव्य सिद्धांतों की ओर चला था। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि 1939 ईस्वी में ही उन्होंने रिचर्ड्स के प्रिंसिपल्स ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म से प्रेरित होकर साहित्य में कल्पना का उपयोग विषयक निबंध लिखा, जो वीणा में प्रकाशित हुआ। इसके बाद निबंधों का यह सिलसिला सिद्धांत चिंतन की ओर मुड़ने लगा। 1940 ईस्वी में हंस के संपादक शिवदान सिंह चौहान के कहने पर उन्होंने साहित्य और समीक्षा निबंध लिखा। दिलचस्प बात यह है कि उस समय नगेंद्र प्रगतिवाद के मित्रों में गिने जाते थे। युग के वातावरण के अनुकूल उन पर फ्रायड का भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके छायावाद की परिभाषा 1943 ईस्वी में नामक निबंध पर यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। तदुपरांत उन्होंने साहित्य की प्रेरणा 1943 ईस्वी और उसके पूरक निबंध साहित्य में आत्माभिव्यक्ति 1946 ईस्वी में क्रमशः जैसे इस प्रभाव की सैद्धांतिक स्वीकृति कर ली। कुछ वर्षों तक यह प्रभाव उनकी व्यावहारिक आलोचनाओं पर भी दिखाई पड़ता रहा, किंतु धीरे धीरे उनकी रुचि काव्य शास्त्र की ओर चली। 1948 ईस्वी में लिखा गया उनका निबंध भारतीय रुचि पाश्चात्य शास्त्र 1949 ईस्वी जैसे उनकी समीक्षा में एक मोड़ का सूचक है। इसके लिए मनोभूमि तो उनके शोध ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका और देव और उनकी कविता 1946 ईस्वी के रचना काल में ही बन गई थी। रीति काव्य के अध्ययन के समय में व्यवहारिक आलोचना से सिद्धांतिक आलोचना की ओर आकृष्ट हो चला था। यह आकर्षण उन पर कुछ ऐसा हावी हुआ कि इसके बाद का सारा महत्वपूर्ण कृतित्व सिद्धांत विवेचन के रूप में ही प्रकट हुआ। इस कालखंड के बीच उन्होंने व्यवहारिक आलोचना न की हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु इनमें से अधिकांश निबंध किसी अवसर की मांग को पूरा करने के लिए लिखे गए संपादित ग्रंथों की भूमिकाओं या अंशों के रूप में रेडियो वार्ताओं के रूप में पत्रिकाओं की मांग पूरी करने के लिए आदि आदि, किंतु इस बात से लेखों का महत्व कम नहीं होता। नगेंद्र के लेखन की कमी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने आलोचक कर्म को अत्यंत दायित्वपूर्ण और गंभीर ढंग से निभाते हैं, इसलिए वे चुनाव ही उस विषय का करते हैं जिसमें उनकी गहन रुचि हो। उनके अपने शब्दों में प्रायः प्रतिष्ठित या ऐसा काव्य ही जिसके स्थायी मूल्य स्पष्ट लक्षित हो मेरी आलोचना का विषय रहा। ऐसी किसी कृति को या कृतिकार को स्थापित करने की स्प्रिया और मन में नहीं आई। जब प्रश्न स्थापित या विस्थापित करने का न हो और विषय ऐसा साहित्य हो जो पहले से ही प्रतिष्ठित हो, तो गुंजाइश केवल व्याख्या विश्लेषण की या नए संदर्भों में रखकर उसके अलक्षित या अल्पलक्षित पक्षों को उजागर करने की रह जाती है। इस कला में नगेंद्र सिद्धहस्त हैं। कामायनी पर लिखे हुए लेखों को वे अपनी व्यवहारिक आलोचना की पराकाष्ठा मानते हैं, किंतु उनकी इस क्षमता का अभाव उनकी पहली रचना से ही मिलने लगा था, जिसने देव और उनकी कविता तक आते आते काफी ऊंचाई पा ली थी। अपने दृष्टिकोण में वे व्यक्तिवादी हैं, अतः सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ और युग बोध उनकी आलोचनाओं में अप्रासंगिक होते हैं। वे कवि की सौंदर्यानुभूति के स्वरूप विश्लेषण पर दृष्टि टिकाकर अभिव्यक्ति की सफलता असफलता के नजरिए से उसका विश्लेषण करते हैं। कुछ निबंधों में फ्रायडीय प्रभावों के कारण उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं करने का प्रयत्न भी किया है। तुलसी और नारी निबंध में हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के विवेचन में और कहीं कहीं देव और उसकी कविता में भी यह प्रयत्न दिखाई पड़ता है। नगेंद्र के व्यावहारिक आलोचक की सामर्थ्य मुख्य रूप से शिल्प विवेचन में व्यक्त हुआ है। उस किस साहित्यकार या कृति की कौन सी विशेषता विचारणी है, इस संबंध में उनकी पकड़ गहरी है। कामायनी और कुरुक्षेत्र एवं उर्वशी की समीक्षाओं की तुलना से यह बात सहज स्पष्ट हो जाती है। अपनी व्यावहारिक आलोचनाओं में उन्होंने विविध विषय लिए हैं। काव्य, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र आदि कृतिकारों से संबद्ध समीक्षाओं की व्याप्ति मध्ययुग से आधुनिक युग तक है, किंतु वे मुख्य रूप से आधुनिक काव्य के आलोचक हैं। उनकी आलोचना में खंडन मंडन या चुनौतियों की अपेक्षा व्याख्या विश्लेषण या अनुशंसात्मक दृष्टि ही अधिक मिलती है। शास्त्र ज्ञान ने उनकी व्यावहारिक आलोचना को गंभीरता और गरिमा दी है। अध्यापक होने के नाते उनके विवेचन में अक्सर जो शैक्षिक अनुशासन प्रियता और विभाजन परिगणन की प्रवृत्ति मिलती है, उसे भले ही स्फूर्ति और ताजगी को क्षति पहुंची हो, लेकिन विवेचन में स्पष्टता और प्रासंगिकता सर्वत्र बनी रहती है। नगेंद्र के सैद्धांतिक निबंधों का जो क्रम साहित्य के मान 1945 ईस्वी, कविता क्या है 1960 ईस्वी और साहित्य का धर्म 1960 ईस्वी आदि स्फुट निबंधों में और भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका भाग दो में पुस्तकाकार का आरंभ हुआ, उसकी चरम परिणति दो रूपों में हुई। अपने साहित्य विषयक दृष्टिकोण को उन्होंने मेरी साहित्यिक मान्यताएं समय 1965 ईस्वी शीर्षक से तीन निबंधों से में सूत्रबद्ध किया। आत्मविश्लेषण की यह प्रवृत्ति छायावादी कवियों और नए कवियों से मेल खाती है। शास्त्र विवेचन की पराकाष्ठा रस सिद्धांत 1964 ईस्वी में हुई। साहित्य को वे आत्माभिव्यक्ति मानते हैं, इसलिए रस सिद्धांत में अनुभूति तत्व को विशेष मान्यता देते हैं। काव्य में अनुभूति को उनके दौर के सभी आलोचकों ने महत्व दिया है। वाजपेयी ने भी साहित्य और आत्मानुभूति नाम से निबंध की रचना की थी और द्विवेदी जी भी साहित्य में अनुभूति को प्राथमिकता देते थे। उत्तर छायावादी कवियों ने भी कविता में आत्माभिव्यक्ति और निश्चलता पर बहुत बल दिया था। यह ध्यान देने की बात है कि उस युग की समूची साहित्य चेतना में छायावाद की अतिशय कल्पना के विरुद्ध निश्चल आत्माभिव्यक्ति को मान्यता दी गई थी। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के काव्य को केंद्र में रखकर रस सिद्धांत की जो लोक मंगलवादी व्याख्या की थी, उसमें छायावादी आत्मपरक आत्माभिव्यक्तियों के लिए कोई गुंजाइश न थी। नगेंद्र ने रस सिद्धांत की जो आत्मनिष्ठ आनंदवादी व्याख्या की, उसके मूल में कहीं इन्हीं भावभीनी अभिव्यक्तियों के लिए स्थान बनाने की प्रेरणा रही। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने संपूर्ण शास्त्र विवेचन में यथा आवश्यक पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रासंगिक और समानांतर सिद्धांतों से तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की खोज करने का प्रयत्न किया। उन्होंने संस्कृत के ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, वक्रोक्ति, जीवित आदि काव्यशास्त्र के ग्रंथों के जो अनुवाद हिंदी के पाठकों को दृष्टि में रख कर कराए, उनकी विस्तृत भूमिकाओं में ही यह प्रवृत्ति सामने आने लगी थी। यह ही बात पाश्चात्य काव्यशास्त्र संबंधी अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व आदि ग्रंथों के बारे में सत्य है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के नए सिद्धांतों का परिचय देने के लिए उन्होंने काव्य बिंब 1967 ईस्वी और नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी दो पुस्तकों की रचना की, जिनमें इन विषयों को सुस्पष्ट विवेचन के साथ ही हिंदी कविता में उनके विनियोग का भी कुशल प्रयास किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका भाग दो और रस सिद्धांत तक इस पद्धति में उत्तरोत्तर विकास और विस्तार ही हुआ है। दरअसल इसके मूल में उनकी यह मान्यता रही कि भारत तथा पश्चिम के दर्शनों की तरह यहाँ के काव्यशास्त्र की भूमिका की एक दूसरे के पूरक हैं और पुनराख्यान आदि के द्वारा उनके आधार पर काव्यशास्त्र का निर्माण सहज संभव है। नगेंद्र अपने ढंग से निरंतर इसका अथक प्रयत्न करते रहे हैं। आज के हिंदी पाठक में और विशेषकर विद्वत समाज में काव्यशास्त्री अध्ययन के प्रति रुचि जगाने और सजगता उत्पन्न करने में उनका विशेष योगदान रहा है। इस प्रकार नगेंद्र ने मुख्य रूप से हिंदी आलोचना में दो कार्य किए हैं, भारत और पश्चिम के आलोचना शास्त्र की प्रचुर सामग्री की ओर भारतीय पाठकों का ध्यान तो उन्होंने आकर्षित किया ही, उसे अनुवादों के माध्यम से सुलभ ही भी कराया और विद्वत्तापूर्ण भूमिकाओं में व्याख्यान, विश्लेषण, तुलना आदि के द्वारा उसे ग्राह्य बनाया। इस प्रकार उन्होंने आलोचना में शास्त्रीय चेतना पैदा की। यह बात अलग है कि आलोचना की पाश्चात्य पद्धतियों को उन्होंने पाठकों के लिए सुलभ कराने का अतिरिक्त आग्रह उनमें उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अपने उत्तर काल में उन्होंने क्रमशः शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य का समाज शास्त्र जैसे गंभीर विषयों का सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत करने का हौसला दिखाया। ये विषय साहित्य के प्रति उनके दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते, न ही इन पुस्तकों में उनके चिंतन क्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई प्रमाण मिलता है, लगे हाथों किसी नए विषय का जायजा लेने का या पाठकों के सामने उसकी कुछ वानगी प्रस्तुत करने का मोह ही उनकी रचना का कारण रहा होगा। उनकी मान्यता में अभी कोई अंतर नहीं आया कि साहित्य काफी अंशों में वैयक्तिक अवचेतन की ही नहीं वैयक्तिक चेतन की भी सृष्टि है, और साहित्य का उद्देश्य है सौंदर्य की सृष्टि, जिसमें विद्रूप का प्रवेश सौंदर्य अथवा आनंद रूप फल योग के साधन मात्र के रूप में ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनसे इस बात की उम्मीद करना ज्यादती होगी कि इन विषयों से टकराने के लिए वे नए सिरे से बहुत बड़ी तैयारी करते हैं। इस बात का श्रेय उन्हें दिया ही जाना चाहिए कि नए विषयों को जानने परखने का उत्साह उन्होंने बनाए रखा, भले ही एक खास किस्म के छद्म अभिजातवादी संस्कार के रहते उन्होंने नई समीक्षा के प्रयोग सपाट बयानी को ऋजु कथन का भोड़ा पर्याय कहकर खारिज कर दिया, और बहुत सी बातों पर यह मानकर विचार करना व्यर्थ ही आसिद्ध का खंडन करने के प्रयास में से भी कोई लाभ नहीं। शायद इसी कारण उनकी इन रचनाओं को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई। व्यवहारिक आलोचक के रूप में उन्होंने पहले पहल सहृदयता से छायावाद की स्वरूप व्याख्या की, विशेषकर उसके शिल्प पक्ष की सूक्ष्मताओं को उजागर किया। वस्तुमुखी साहित्य के साथ तो शुक्ल जी काफी हद तक न्याय कर चुके थे, किंतु आत्मनिष्ठ प्रगीतमय रचनाओं को ही सही परिप्रेक्ष्य में सामने रखने का प्रयास नगेंद्र ने ही किया। जो आलोचना दृष्टि उन्होंने आरंभ में बना ली थी, वे उत्तरोत्तर उसी को परिवर्धित और पुष्ट करते चले गए। शास्त्र विवेचन ने उसे गरिमा ही दी। इस प्रकार उनका आलोचक व्यक्तित्व क्रमशः साधनावस्था से सिद्धावस्था की ओर बढ़ता ही रहा। शुक्लोत्तर आलोचना की जो दो मुख्य समस्याएं थी, शुक्ल जी की साहित्यिक मान्यताएं और छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, उनसे इस दौर के अन्य आलोचकों की तरह देवराज भी जूझते रहे। उनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति छायावाद का पतन अपने चौंकाने वाले नाम के बावजूद तत्वतः कोई क्रांतिकारी कृति नहीं है। वस्तुतः शुक्लोत्तर आलोचकों में छायावाद की प्रतिष्ठा के लिए किए गए प्रयासों के बाद छायावाद का पतन एक प्रकार की प्रतिक्रांति है। छायावाद के युगांत की घोषणा तो स्वयं छायावादी कवि ही कर चुके थे, और छायावादी भावुकता तथा काल्पनिकता को उन्होंने भी त्याज्य मान लिया था। दूसरी ओर प्रगतिवादी लेखक भी छायावाद को पलायनवादी घोषित कर रहे थे। तब एक दशक बाद छायावाद के पतन की घोषणा करने में कोई विशेष नवीनता न थी। इस प्रयास की नवीनता उस हालत में और भी संदिग्ध हो जाती है जब स्वयं देवराज को पुस्तक समाप्त करने के बाद लगा कि इस पुस्तक के कतिपय अंश शुक्ल जी की छायावाद संबंधी समीक्षाओं के भाष्य मात्र हैं। फिर भी इस पुस्तक का महत्व इस बात में है कि इसने काव्य कला के स्तर पर अंतिम रूप से छायावादी काव्य की दुर्बलताओं को विश्लेषणात्मक ढंग से सोदाहरण उद्घाटित किया। मान्यताएं भले ही शुक्ल जी की रही हो, पर पारिभाषिक शब्दावली देवराज की अपनी गढ़ी हुई थी। जैसे छायावादी कविता के विन्यास में केंद्रापगामी प्रवृत्ति की बहुलता और उसके भाव पक्ष में अर्धभुक्त मनोदशाओं का चित्रण है, जहां तक इसकी मूल दृष्टि का संबंध है, स्वयं देवराज को साहित्य चिंता तक आते आते उसकी प्रासंगिकता एकांगिकता का बोध हो गया था। छायावादी कवियों के कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ी कि छायावाद का पतन के पाठक उनके छायावाद संबंधी विचारों को समग्रता से में देख सके। इसके लिए प्रस्तुत निबंध को पढ़ना आवश्यक है। उन्होंने महसूस कर लिया था कि स्वभावतः अवस्था वृद्धि और रस संवेदना के विकास के साथ निर्णय बुद्धि अधिक संतुलन होना सिखाती है। देवराज जहाँ तक एक और किसी कृति अथवा कलाकार के मूल्यांकन की कसौटी, उसकी अनुभूति की गहराई, व्यापकता एवं नूतनता को मानते हैं, वहाँ यह कहना नहीं भूलते कि साहित्यिक अनुभूति में बोध या ज्ञान का अंश अवश्य रहता है। अनुभूति की जिस व्यापकता की उन्होंने बार बार मांग की है, वह छायावाद की आत्मोन्मुखता से भिन्न लोकोन्मुख दृष्टि है। उनका विश्वास है कि जीवन से आंख बचाकर नहीं, जीवन को उसकी पूर्णता में रागात्मक निरीक्षण और अनुभूति का विषय बनाकर ही कलाकार अपने काम को पूर्णता संपादित कर सकता है। श्रेष्ठ कलाकार बनने के लिए अनुभूति में गहराई और व्यापकता दोनों ही गुणों का सन्निवेश होना चाहिए। महान कलाकार अपने युग का पूर्ण प्रतिनिधि, संपूर्ण व्याख्याता होता है। उसकी वाणी में युग के सारे संघर्ष, सारे राग विराग, समस्त प्रश्न और संदेह मूर्तिमान होकर बोलते या ध्वनित होते हैं। जो आलोचक साहित्य में समसामयिक युग का प्रतिनिधित्व देखने का आकांक्षी हो, वह स्वभावतः आलोचना के स्थायी या शाश्वत कहे जाने वाले प्रतिमानों का समर्थक नहीं हो सकता। अपने युग के साहित्यिक के इसी संकट को पहचान कर देवराज ने कहा कि जब किसी नवीन कलाकृति की अनुभव गोचर महत्ता प्रचलित सिद्धांतों द्वारा व्याख्यात नहीं होती, तब उसकी व्याख्या के लिए नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए उन्हें रस ध्वनि की परंपरागत कसौटियां अपर्याप्त प्रतीत हुई। आज रस और ध्वनि की कसौटियों पर तुर्गेनेव के पिता और पुत्र गाल्सवर्दी के फोरसाइट सागा अथवा प्रेमचंद के गोदान को ठीक से नहीं जांचा जा सकता। रस ध्वनिवाद के साथ परंपरा से जो चिंता चिरंतनता और लोकोत्तरता का अनुसंग जुड़ गया है, उससे पैदा होने वाली दृष्टि की संकीर्णता को लक्ष्य करते हुए देवराज ने कहा, हमारे रस ध्वनिवादी तथा परलोक चिंतक देश में ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टि एवं आलोचना का एकांत अभाव रहा है। फलतः हमारे छात्र साहित्य और युग की सापेक्षता को बहुत कम अथवा बिल्कुल ही नहीं समझ पाते और पिछले अर्थ में शाश्वतवादी अथवा रसवादी बने रहे। देवराज की यह ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टि सतही धरातल पर किसी युग की भौतिक घटनाओं या अर्थव्यवस्था और वितरण की चिंता से पैदा नहीं होती, बल्कि इसमें कहीं गहरे स्तर पर संस्कृति बोध को प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। प्रतिमान के रूप में संस्कृति बोध को इस समय में उतना ही महत्व देता हूँ जितना क्लासिकी विचारक काव्य के प्राण तत्व के रूप में रस को देते रहे हैं। इस प्रतिमान को उन्होंने अज्ञेय के सहयोगी कवियों तार सप्तक के संदर्भ में लागू करते हुए तुलनात्मक निष्कर्ष दिया। उपलब्धि की इस विषमता का मुख्य कारण हमारी समझ में अज्ञेय के व्यक्तित्व के सांस्कृतिक समृद्धि है। देवराज के अनुसार नए कवि की केंद्रीय दुर्बलता संस्कृति तत्व का ह्रास अथवा संस्कृति बोध की क्षीणता ही है, क्योंकि वे लेखक जिनमें किसी कोटि का सांस्कृतिक बोध समृद्ध नहीं है, न तो अधिक सृजनशील हो पाते हैं और न विशेष प्रगति ही कर पाते हैं। इस संस्कृति बोध पर बल देने के कारण ही देवराज अपेक्षाकृत लंबी रचनाओं के प्रशंसक हैं। भौतिक परिस्थितियों से भिन्न सांस्कृतिक परिवेश की ऐसी अवधारणा जिसमें मनुष्य का सारा अतीत सारा इतिहास समाया हुआ हो, उनमें उन्होंने संभवतः इलियट के प्रभाव से निर्मित की थी। प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र से संबद्ध साहित्य का सही रूप में आस्वादन संभव हो सके, इसके लिए उन्होंने उपभोगता जनों से भी नवीन युग संवेदना से परिचय या तादात्म्य की मांग की थी। देवराज के इस उत्कट सांस्कृतिक आग्रह का अभिप्राय यह नहीं है कि वे जीवन के भौतिक यथार्थ से भिन्न साहित्य को कई अलग धरातल मानते हैं। साहित्य में विचार तत्व और लेखक के बौद्धिक मंतव्यों पर विचार करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि साहित्य की समीक्षा और मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, साहित्यकार यथार्थ के कितने विस्तार को संगठित रूप से पाठक की चेतना के सामने उपस्थित कर सका है और उस यथार्थ के भिन्न अंगों पर उसने कितना विवेकपूर्ण गौरव दिया है। यही नहीं, साहित्य में वास्तविकता के समर्थक देवराज ने कल्पना और वास्तविकता शीर्षक निबंध में कल्पना के द्वारा अनुभूति के अतिक्रमण का विरोध किया। वस्तुतः कुल मिलाकर देवराज की आलोचक दृष्टि रोमांटिक के विरुद्ध क्लासिकी दृष्टि थी। क्लासिकल के प्रति उनका आग्रह अनेक रूपों में व्यक्त हुआ। सिद्धांत निरूपण के बीच रह रहकर वे प्राचीन क्लासिकी साहित्य के गुणों का हवाला देते चलते हैं। शैली में वे जिस चीज के विशेष मांग करते हैं वह भी उनकी ठेठ क्लासिकी रुचि को ही प्रमाणित करती है। स्पष्टता और सशक्तता, घनता और सघनता और यथार्थानुगामिता आज किसी प्रकार के शब्दाडंबर और हल्की रुचि के द्योतक वाग्वैदग्ध्य के लिए अवकाश नहीं। आज न हम श्लेष को सहन कर सकते हैं न आडंबरपूर्ण अनुप्रासों को, यानी वे छद्म क्लासिक के विरुद्ध भी उतने ही सतर्क सावधान हैं जितने गैर क्लासिक के। इसलिए वे शब्दों से ज्यादा उनके अनुसंगों और ध्वनियों पर जोर देते हैं। शब्दों की अर्थवत्ता के निर्णय के लिए उन्होंने जिस संदर्भवाद पर बल दिया वह इसी दृष्टि का परिणाम है। क्लासिकल के आग्रह का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि धीरे धीरे शब्द रूढ़ होकर दोहराए जाते हैं। वे प्रायः संदर्भों और अनुसंगों से मुक्त होकर क्लासिकल का भ्रम पैदा करते हैं, क्लासिकल की सृष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में असली और नकली के बीच का भेद शब्द के आधार पर नहीं अनुसंग और संदर्भ के आधार पर ही किया जा सकता है। इसलिए देवराज जिस क्लासिकल को मान्यता देते हैं वह एक विशेष दृष्टिकोण है, परंपरा अनुसरण नहीं। इसलिए उनका जोर शब्द पर नहीं शब्द प्रयोग पर है, क्योंकि अंततः विभिन्न शब्दों या पदों का अर्थ उनके संदर्भ से निर्धारित तो होता है। इसलिए उनमें नए अनुसंग एवं ध्वनियां जगाने की क्षमता स्थापित करने के लिए उन्हें नए विचारों, नए चित्रों एवं नई संवेदनाओं के संदर्भ में नियोजित करना पड़ता है। क्लासिकल का अर्थ उनके लिए कालजयी कृतियों का अनुकरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गरिमा और नए अनुषंगों और संदर्भों से अर्थवान पदावली के लिए क्लासिक्स की सृष्टि है। देवराज ने जो तो व्यावहारिक समीक्षाएं भी कम नहीं लिखी, पर उनका मनन मुख्यतः सैद्धांतिक आलोचना में ही रमा है, और अंततः उनकी व्यावहारिक समीक्षाएं भी किसी न किसी सिद्धांत निरूपण के क्रम में ही आती हैं। रुचि वैचित्र्य में उनमें इस हद तक है कि एक ओर तो उन्होंने अलंकार और ध्वनि और उर्दू गजल में चमत्कार से लेकर साहित्य का प्रयोजन, युग और साहित्य, साहित्य में प्रगति और हिंदी आलोचना का धरातल जैसे विविध विषयों का विवेचन किया, और दूसरी ओर उनकी प्रतिक्रियाएं आदि काव्य से लेकर प्रयोगशील काव्य और अधुनातन कथा साहित्य तक के बारे में व्यक्त हुई। यह बात अलग है कि जो रुचि वैचित्र्य विषय चयन में दिखाई पड़ता है, वही मूल्यांकन में भी। कुल मिलाकर देवराज का महत्व इस बात में है कि उन्होंने सही समय पर साहित्यिक चेतना में आने वाले बदलाव को पहचाना, रुमानियत से के परित्याग की आवश्यकता को समझा और हिंदी आलोचना को सैद्धांतिक स्तर पर समृद्ध करने का प्रयास किया। खंड 4, शुक्लोत्तर आलोचना समाप्त।